हरे 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 कृष्णा कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण मुख कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस वक्त अपने घरों में कोरोना के कारण बंद हैं, फिर भी हमारी आध्यात्मिक पोषण और शिक्षण और भागवत का नित्य सेवन चालू है। अब भाग्यशाली हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में जब सब लोग बहुत बड़े मानसिक तनाव में और आर्थिक संकट में हैं, तो फिर सबके कल्याण के लिए जब और कोई चारा नहीं है तो भगवान के शरण लेकर भगवान के ही स्वरूप श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है और उसी के श्रवण वर्णन से भगवान का ये पोषण का स्कंद है। भगवान हमारा पोषण करे, रक्षण करे, विश्व का रक्षण करे, इस कामना से यहाँ वृत्तासुर का प्रसंग चल रहा है। वृत्तासुर के चार श्लोकों में बहुत अद्भुत साक्षात भगवान को प्रार्थना है और पहले श्लोक का कल हमने 24वें श्लोक का कल हमने विस्तार से श्रवण वर्णन किया। वृत्तासुर भगवान श्री संकृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास, कोई कैसे आपके दास जिन्होंने केवल आपके ही चरणों का आश्रय लिया है, उनके दासों का दास पुनः कब बनूंगा? पहले मैं था सिर्फ आपका दास, अब मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। वो बहुत सुरक्षित आध्यात्मिक स्थिति है, और अगर मैं आपके दासों का दास बन जाऊंगा तो तीन ही भक्ति के मुख्य काम है जो मैं करूंगा। मन से आपके गुणों का स्मरण करूंगा, वाणी से आपका कीर्तन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपका प्रचार करूंगा, और शरीर से आपकी सेवा करूंगा। शरीर से सेवा की प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में शरीर से सेवा के लिए लिखा है कि आपके पास जमीन है तो भगवान के लिए फूल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, घर में गाय है तो भगवान के लिए दूध निकाल कर भगवान को भोग लगा सकते हैं। ऐसे आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान से जोड़ सकते हैं, तो काया से भगवान की सेवा करेंगे। अब और ये श्लोक जो है इसको कुछ वैष्णव आचार्य ने, पुष्टि मार्ग के वैष्णव आचार्य ने इनको जीव का धर्म कहा है। तो धर्म, हम स्वधर्म दो प्रकार का होता है। एक शरीर का स्वधर्म होता है जो वर्ण आश्रम के अंतर्गत अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अलग है, ब्रह्मचारी का सन्यासी का कार्य कर्तव्य अलग है, लेकिन एक स्वधर्म आत्मा का होता है। वो स्वधर्म जो आत्मा का है वो भगवान की सेवा करना है, भगवान के सेवकों के सेवक बन के सेवा करना है। वो भक्ति का, जो भक्ति करने का सबको सौभाग्य है, भगवान के सेवक बनने का सबको सौभाग्य है, ये स्वधर्म जो है, ये स्वधर्म इस श्लोक में बताया गया है। अब भक्त की कामना, भक्त का अर्थ क्या है, धर्म अर्थ, भक्त का अर्थ क्या है, अथवा भक्त का धन क्या है, भक्त किस चीज को चाहता है। मानो के भगवान ने वृत्तासुर को कहा कि तुम अगर इतना ही मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें स्वर्ग चाहिए, तुम्हें ब्रह्म लोक चाहिए, सत्य लोक चाहिए, इस धरती का सम्राट का पद चाहिए, रसातल का राज चाहिए, तुम्हें योग की सिद्धियां चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम मांग लो जो तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मैं तो सभी वर दे सकता हूं। जब भगवान ने ऐसे कुछ मांगने के लिए वृत्तासुर को कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो, तो वृत्तासुर ने ये श्लोक पढ़ा। अब हम इस श्लोक का पाठ करेंगे 25वें का। ननाक प्रष्टम न च पारमेष्ट्यम,
ननाक प्रष्टम न च परामेष्ट्यम,
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम,
न सार्वभौमं
नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा
न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा
संजस्य त्वा विरहय कांक्षसे
समांजसा त्वा विरहय कांक्षसे।
तो वृत्तासुर जी कहते हैं न ना, नाक पृष्ठम। तो नाक पृष्ठम का अर्थ है स्वर्ग लोक या दुरु लोक। मुझे आप स्वर्ग लोक कहते हैं, स्वर्ग से तो ऊपर दुरु लोक है जो तो इस धरती के ऊपर नाश नहीं होता है प्रलय के समय। उसको श्वेत द्वीप भी कहते हैं, वैकुंठ की जैसा भी है, गंगा भी पहले वहां उतरी है, सप्तऋषि उसके चारों ओर सेवा में होते हैं। क्या तुम ऐसा अद्भुत अविनाशी इस भौतिक जगत में लोग है उसको ले लो? बोला मुझे नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग या द्रुलोक नहीं चाहिए। तो क्या तो उससे भी ऊपर सत्यलोक ले लो, ब्रह्मा जी का लोक है, इस आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंची अवस्था है। तो कहते हैं न पारमेष्ट्यम। पारमेष्ट्यम का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं ब्रह्मा जी जहां रहते हैं वो स्थान। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग से ऊपर दुरुलोक है वो भी नहीं चाहिए, और मुझे सत्यलोक भी नहीं चाहिए या जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु हम जानते हैं कितनी बड़ी आयु है। ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनुओं का शासन बदलता है, और एक मनु के शासन में 71 बार 4 युग बदल जाते हैं। तो इतना बड़ा जहां आयु मिले, इतना बड़ा सुख शांति मिले, वो सत्यलोक ले लो, बोला वो भी नहीं चाहिए। तो फिर इस जहां धरती पे हो तो धरती का साम्राज्य ले लो, बड़े सम्राट बन जाओ। तो कहते न सार्वभौमम। वैसे सार्वभौम भगवान का नाम है जो सर्वव्यापी है, और सर्वभौम का यहां श्री प्रभुपाद जी अर्थ लिखा है ये पूरे भूमंडल का एकमात्र राज। यहां का स्वामित्व तो चाहिए तो पूरे भूमंडल का स्वामी दे दूं? बोला मुझे नहीं चाहिए। बोला तो फिर इससे भी ज्यादा रसातल में सूतल लोग, जैसे बलि महाराज को दे दिया है असुर राज को, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, तो आपको रसातल चाहिए? बोलो नरसाधिपत्यम। तो ऐसे अधिपति का मतलब राजा, मैं रसातल का भी राजा नहीं बनना चाहता हूं। तो फिर योग की सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धियां योग की, अणिमा लगीमा महिमा, छोटे से छोटा बन जाओ, बड़े से बड़ा बन जाओ, वो प्राप्ति जो चाहो अपनी इच्छा से प्राप्त कर लो, ऐसी ही सिद्धियां योगियों को मिलती हैं। इससे भी ज्यादा अद्भुत सिद्धियां योग प्राप्त योगी प्राप्त कर लेते हैं। बोला ना न योग सिद्धिर, न योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो न स्वर्ग चाहिए, न दुरुलोक चाहिए, न ब्रह्मा जी का सत्यलोक चाहिए, न पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, न रसातल का स्वामित्व चाहिए, न योगियों की सिद्धियां चाहिए। तो फिर पुनः दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी मुक्ति को ले लो। तो कहते हैं अपुनर्भवम वा, न अपुनर्भवम वा। पुनर्भवम, पुनर्भवम का मतलब अपुनर्भवम, पुनर्भवम का मतलब दोबारा जन्म लेना, अपुनर्भवन का मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना, मतलब मुक्त हो जाना। तो मुक्ति बोला नहीं चाहिए। और इसके बाद एक शब्द कहते हैं समंजस त्वा। त्वा का मतलब हे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप सब कुछ दे सकते हो, आप वरदाता हो, आप वरदराज हो। समंजस का अर्थ है वरदराज, मतलब सब कुछ देने का सामर्थ्य जिन में है, जो सब कुछ दे सकता है भगवान, जो सब कुछ देने वाले हैं, कल्प वृक्ष की तरह जो मांगोगे वो दे सकते हैं, वो वरदराज हैं। तो आप समंजस्व तवा, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप ये सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। बोला क्यों नहीं चाहिए? तो कहते हैं विरह या कांक्ष है, अगर आपसे जुदाई हो और ये सब चीजें मिलें तो नहीं चाहिए। विरह कांक्षे, विरह आपसे अलग हो जाना पड़े, ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। आपको छोड़ के ये सब चीजें मिलें तो मुझे नहीं चाहिए। इसका ऐसा ही दामोदर अष्टक में हम देखते हैं सत्यव्रत मुनि को भगवान कहते, तो वो कहते न मोक्षम वधिम न मोक्ष वधि वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष से ऊपर वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे ये वर कोई वरेयम ना, कोई वर नहीं चाहिए। आप वर दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? बोले मुझे आपका सानिध्य चाहिए, आप मेरे मन में सदा बसे रहें, मनसा आविरस्ताम, मेरे मन में बसे रहें। और फिर कहते हैं मेरे मेरे को आप आंखों के सामने दर्शन दे दें, मैं आपके सुंदर मुख का दर्शन करना चाहता हूं। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलई रक्त कुंतलई स्मिग्ध स्निग्ध रक्त कुंतलई, ये जो सुंदर सा श्लोक है, मुहश्चुंबितम गोपिया, जहां माँ यशोदा मैया जिस मुख का चुम्बन करती है, बहुत सुंदर घुंघराले बाल वाला मुख है, ये छवि मेरे आंखों के सामने बनी रहे। इसके सामने ये सारे वरदान कुछ भी नहीं है। इसका तात्पर्य और भाव ये है कि भगवान को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है उसका अधिपति बनना माया में फंसना है। जो चीज भगवान से अलग है वो माया है। तो ये सब चीजें इनके ऊपर त्रिगुणात्मक माया का प्रभाव पड़ता है, ये माया से रहित नहीं है। कोई कह सकता है कि मुक्ति के ऊपर तो माया का प्रभाव नहीं है, योगियों के ऊपर तो निश्चित रूप से माया का प्रभाव हो सकता है, लेकिन मुक्ति भी जो सायुज्य मुक्ति ब्रह्म में लीन होते हैं वहां से भी कोई कुछ करने के लिए जब वहां नहीं होता है तो वहां से भी पतन की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए तो यहां इस श्लोक में भाव क्या है कि भक्त का धन क्या है? भक्त का धन है भगवान का सानिध्य। और ये एक ही बात है जो सारा भक्ति का साधन का एक लाइन में क्या सार है, स्मर्तव्य विष्णु सततम, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, न कभी उसका विस्मरण हो। भगवान को भूल के सब संसार मिल जाए तो कुछ ही काम का नहीं है, और भगवान की स्मृति रह जाए और कुछ भी नहीं हो तो भी कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। तो यहां धन क्या है भक्त का? भक्त का धन है भगवान का सानिध्य, जो वो पहले ही कह के आया है अकिंचन गोचर। अकिंचन गोचर का मतलब भक्तों के धन आप भगवान है। अकिंचन वित्ताय, वित्त कहते हैं धन को। जो संसार की कोई चीज भगवान से नहीं मांगता है उसको भगवान स्वयं ही मिलते हैं, और भगवान स्वयं उसका अपना धन है। तो भगवान तो लक्ष्मीपति है, सारा धन तो लक्ष्मी के द्वारा संसार में प्रसारित होता है, बांटा जाता है, लेकिन लक्ष्मीपति मिल जाए तो फिर उससे अलग धन की क्या आवश्यकता है? तो ये थोड़ा सा सिद्धांत समझना चाहिए। इस सिद्धांत के लिए ये दो शब्द बहुत सरल हैं कि भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान को मांगना चाहिए। अगर हमको मांगना ही है तो भगवान को मांगे कि भगवान से मांगे? भगवान को मांगने वाला बुद्धिमान है, भगवान से मांगने वाला इतना बुद्धिमान नहीं है कि जो मिलेगा वो चला जाएगा फिर मांगना पड़ेगा। लेकिन भगवान को मांग लेगा तो भगवान मिल गया तो सब कुछ भगवान के साथ ही है, भगवान से अलग तो कुछ चीज है नहीं। उदाहरण के लिए हमेशा ये कहते रहते हैं, अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया था, दुर्योधन ने कृष्ण से सेना मांग ली थी द्वारका की। एक तरफ सेना ले ली दुर्योधन ने, एक तरफ अकेला कृष्ण ले लिया अर्जुन ने, तो अर्जुन के निर्णय की सफलता को तो आज विश्व गा रहा है कि कृष्ण अर्जुन का सारथी बना और पार्थ सारथी के नाम से कृष्ण प्रसिद्ध हो गया और अर्जुन विजयी हो गया। आज भी गीता में अर्जुन का चित्र कृष्ण के साथ छपा हुआ है, उसने कृष्ण को मांग लिया था और दुर्योधन ने मांग लिया था कृष्ण से सेना, और सेना भी समाप्त हो गई और दुर्योधन का भी नाम निशान मिट गया। तो ये भगवान को मांगना या भगवान से मांगना, तो यहां वृत्तासुर कहते हैं भगवान आप हमको मिले, आपसे जुदाई ना हो, आपका विरह ना हो, बाकी ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एक भाव तो सीधा सा ये है कि जिसको भगवान मिल जाएंगे उनको ये सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी, उनको इनके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर 2000 रुपये का नोट है तो उसके अंदर 5 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, 50 रुपया भी है, 100 रुपया भी है, 500 है, 1000 है, ये सब नोट उस 2000 के नोट के अंदर आ ही जाते हैं। तो भगवान है तो ये सब चीजें तो भगवान के अधीन है। एक उदाहरण हमें हमेशा सामान्य लोगों को समझाने के लिए देते हैं प्रचार के लिए। महाराज किसी का जन्मदिन था, उसने घोषणा कर दी जिसको चाहिए जो चाहिए जिसके ऊपर हाथ रखे वो लेके चला जाए। तो मांगने वाले तो बहुत थे, जिसको जो धन चाहिए धन ले गया, सोना चाहिए सोने के ऊपर हाथ रखे, गाय चाहिए गाय के ऊपर हाथ रखे, जमीन चाहिए जमीन के ऊपर हाथ रखे, जो चीज चाहिए वो ले जा रहा था। एक बुढ़िया माता जी आई और उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। बोला महाराज का जन्मदिन है, महाराज ने कहा जो चाहिए वो ले जाओ जिसके ऊपर हाथ रखो वो तुम्हारे। बोला मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। बोला महाराज को मिलके क्या करोगी। बोला नहीं पूछो महाराज से क्या करना चाहते हैं। महाराज से मिला दिया तो महाराज से पूछती है महाराज ये क्या है। बोला मेरा जन्मदिन है, जिसको जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रखे सर के ऊपर ले जाए। तो बुढ़िया ने कहा सच। बोला देखो सब ले जा रहे हैं, तुम भी जो चाहे वो ले जाओ। बुढ़िया ने हाथ लंबा करके राजा के सर के ऊपर रख दिया। अब राजा के सर के ऊपर हाथ रख दिया तो राजमाता बनके बैठ गई, तो अब राजा से मांगने की क्या जरूरत है, अब तो सारा राज उसका हो गया, वो राजमाता बन गई। तो ऐसे भगवान को मांगना चाहिए, ये कहते आपकी जुदाई ना हो, आप मिले फिर कुछ भी नहीं मिले तो भी कोई परवाह नहीं, और आपसे जुदा होके सब कुछ मिले तो भी किसी काम का नहीं। ये इसका सरल दो शब्दों में इसका अर्थ है, भगवान को भूल के पूरा विश्व मिल जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए, सत्य लोक मिल जाए तो भी किसी काम का नहीं है, और भगवान मिल जाए और कुछ भी नहीं मिले तो भी कोई नुकसान नहीं, कोई कमी नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं। तो अब इस श्लोक का अर्थ आप सबको समझ में आ गया होगा। हे स्वामी आप सभी आशीर्वाद दे सकते हैं, सभी फल दे सकते हैं, सभी सौभाग्य दे सकते हैं, सभी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन मैं दुर्लोक भी नहीं चाहता हूं, स्वर्ग का लोक भी नहीं चाहता हूं, ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहता हूं, मैं धरती का राजा बनना नहीं चाहता हूं, न ही पाताल लोक का या सूतल लोक का या रसातल लोक का राजा बनना चाहता हूं, न तो मुझे योग की सिद्धियां चाहिए और न ही मुक्ति चाहिए। अगर मेरे को आपके चरणों का सानिध्य छोड़ना पड़े तो यह मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब आपके चरणों में रहते हुए ये सब चीजें हों तो आपकी सेवा में लगा सकता हूं, ऐसे समझना चाहिए। ये सब कुछ चीजें हों और भगवान का सानिध्य हो तो आप भाग्यशाली हो कि आप सब चीजें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो धन क्या है। बोला धन तो है भगवान, और इस धन के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये धन किस भाव से दिया है, किस रूप में दिया है। गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन भगवान के नाम का संकीर्तन है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। तो जो भगवान के नाम का मुख से उच्चारण करता है वो साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धन है, सबसे बड़ा धन ये, इसको कहते हैं पक्का धन। ये वो धन है जो कभी नाश होने वाला नहीं है, कोई चोर चुरा के नहीं ले जा सकता, आग जला नहीं जा सकती है, पानी इसको डुबा नहीं सकता है। ये धन है, भगवान के नाम का धन है, भगवान नाम से अलग नहीं है। भगवान के नाम का सुमरण सदा बना रहे, उसका विस्मरण न रहो, तो फिर हम समझें कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। संसार की कुछ चीजें मिली तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं मिली तो भगवान का भजन करते रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान से कोई भी भौतिक सुविधाएं भौतिक वरदान नहीं चाहता। शुद्ध भक्त भगवान से कोई भी भौतिक वरदान नहीं चाहता, वो केवल भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहता है। इसलिए ये श्लोक चेतन चरितमृत का याद आना चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। भुक्ति का मतलब कर्म करके स्वर्ग में जाके भोग करें वहां का, ये हुई भुक्ति। मुक्ति का मतलब ब्रह्म में लीन होना, संसार के संकट से मुक्त हो जाना। सिद्धि का मतलब योग की सिद्धियां। ये तीनों साधन हमेशा अशांति का कारण है, क्योंकि इसमें जो मांगते हैं वो सदा नहीं रह सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम, भगवान का शुद्ध भक्त निष्काम है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो यहां भी उसकी कोई न तो स्वर्ग आदि के भोग की इच्छा है, न मुक्ति की इच्छा है, न योग की सिद्धि की इच्छा है, और ये सब चीजें यहीं कही गई है। उसको किस चीज की इच्छा है? केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करने की। भगवान की प्रेममयी सेवा करने की, भगवान की भक्ति, भगवान का सुमरण, इसकी केवल एक ही कामना है। ये कामना भौतिक कामना नहीं है, ये है आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें हम भगवान के सेवक हैं। तो सेवक वो जो सेवा करे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर भक्तों के संग में दो चीजें चाहता है। शुद्ध भक्त क्या चीज क्या चाहता है? दो चीजें चाहता है, भगवान की प्रेममयी सेवा और भगवान के भक्तों का संग। क्यों इसमें दूसरा क्यों ऐड किया गया? ओनली एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ऑफ डिवोट। भगवान के जो पार्षद है उनके संग में रहना चाहते हैं, और ये भगवान के पार्षद कौन है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले कहा है दास अनुदास, तो वो भगवान के पार्षद कौन है? यहां ये असल में एक दृष्टि से देखा जाए, हमारे गौड़ीय वैष्णव दृष्टि से इसको देखा जाए तो भगवान का, भगवान की सेवा हमको मिलेगी भक्तों के द्वारा। भगवान की सेवा के भाव जो हैं, दास्य भाव की सेवा है, सखा भाव की सेवा है, वात्सल्य भाव की सेवा है, माधुर्य भाव की सेवा, ये चारों भाव में सेवा मुख्य है। सेवक तो राधा रानी भी सेवा कर रही है, यशोदा मैया भी सेवा कर रही है, सखा जो मधुमंगल आदि है वो भी भगवान को आनंद देके सेवा ही कर रहे हैं, रक्तक पत्रक आदि भगवान के जो सेवक हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के नित्य पार्षद, उनका सानिध्य चाहिए, उनका अनुगत होना, उनका अनुगत होना मतलब उनके पीछे चलना, उनका अनुगामी बनना। तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्तों का अनुगामी बनना, ये है राग अनुगा भक्ति। ये शुद्ध भक्तों का अनुगामी बनगा, ये राग अनुगा भक्ति है। और इसके लिए हमारा सौभाग्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, ये सारे रूप गोस्वामी आदि भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला के पार्षद हैं, मंजरियां हैं या भगवान के सखा हैं। और हमारा जो गुरु वर्ग है, हमारा जो परंपरा है, वो सारी परंपरा इनके अनुगत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम सब रूप गोस्वामी के अनुगत है, और अनुगत हैं, रूप अनुगा कहलाते हैं। इसलिए राग अनुगा साधन का सिद्धांत है, गौरंग महा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साधन का बाहर से पालन करना। जैसे उन्होंने रोज नेम संख्या पूर्वक नाम गानन, संख्या पूर्वक नाम का गान किया है, बड़े बड़े सुंदर मंदिरों का स्थापना किया है, महान दिव्य शास्त्र और ग्रंथों को लिखा है, ये कार्य बाहर की दृष्टि से हमको करना चाहिए। और अंदर की दृष्टि से ये जो भगवान के पार्षद हैं महाप्रभु की लीला में, ये कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, ये रति मंजरी है, तो उस भाव से बाहर में इनके अनुयायी बनना चाहिए। इसलिए हमको रूप अनुगा कहा जाता है। तो यहां जो प्रभुपाद जी दो बातें लिख रहे हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा, लेकिन मिलेगी किससे? बोला मिलेगी भगवान के शुद्ध भक्तों से। भगवान के शुद्ध भक्त हमारे को भगवान की सेवा देंगे, सीधी भगवान की सेवा नहीं मिलती। प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे, एक बार प्रवचन में कह रहे थे, आपके पास बहुत सुंदर फूल है, आप श्री कृष्ण को प्रेम से सेवा में अर्पण करना चाहते हैं, आप सीधा देंगे तो श्री कृष्ण उसको न लेगा न मानेगा न आपको जानेगा, आपको देना है तो आप राधा रानी के हाथ में दीजिए, कहिए हे स्वामिनी आपके प्रीतम कृष्ण को ये पुष्प अर्पण कर दीजिए, और राधा रानी के हाथ से श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उस पुष्प को लेके कहेंगे किस भाग्यशाली भक्त ने ये भेंट मेरे को दी है। तो ये जो हमारे गुरु वर्ग हैं, ये राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, तो हमारे को जो सेवा में लगाएंगे भगवान की, वो सेवा में लगाएंगे गुरुजन। तो गुरुजनों के शरण में जाने से भगवान की सेवा में लगना हमारे लिए सुलभ है, सरल है और श्रेष्ठ है। सीधी भगवान की सेवा संभव नहीं है। इसलिए दास दास अनुदास रामानुज आचार्य के दृष्टांत में एक जगह आता है, रामानुज आचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ तिरुपति की तरफ जा रहे थे, तो एक नगर में एक शिष्य को एक बहुत धनी अपने उनके अनुयायी के पास भेजा कि उनको समाचार दो कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं और आप उनको ये समाचार दे दो। तो जो सेवक उनको समाचार देने गया, उसने कहा कि महाराज स्वामी श्रीपाद रामानुज आचार्य यहाँ पधारे हैं। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, पंडाल लगाओ, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, और इस तरीके से बड़ी व्यवस्था करने लगा। ये वापस आया तो रामानुज आचार्य ने पूछा कैसे? बोला महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा व्यवस्था करने लग गया। बोला आप जो उनको समाचार देने गए थे हमारे उनके घर में जाने का, और उनको इन सेवा का अवसर, उनको अवसर ये मौका देने गए थे, आपको जलपान का पूछा? बोला महाराज वो तो इतना आपका नाम सुन के प्रसन्न हो गया, मेरे से तो नहीं पूछा। बोला अब तुम एक और हमारा बहुत प्रेमी है, गरीब है, लेकिन उसको जाके ये समाचार दो। उसने जाके कहा भैया गुरुजी यहाँ आए हुए हैं परशुरामा पुण्य रामानुज आचार्य जी। उसने कहा आप सेवा गुरु की देने आए, गुरु भगवान की सेवा में लगाने वाला है, और आप मुझे ये समाचार देने आए, पहले तो आप बैठिए, ये चटाई है, ये जल लीजिए, ये पान, ये केला खाइए, और ये इस तरीके से उसका बड़ा आदर किया। ये वापस आया, पूछा स्वामी रामानुजाचार्य पाद ने पूछा, बोला कैसे? बोला बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन उस प्रसन्न होते ही मुझे पहले बिठा के बड़ा आदर के साथ मेरा सम्मान किया, मुझे जलपान कराया। तो रामानुजाचार्य ने कहा हमको इसके घर जाना है, क्योंकि सेवा किसी को मिलेगी तो सेवक के द्वारा ही मिलेगी। यदि आप, इसने आपकी सेवा की है इसलिए इसकी सेवा हम स्वीकार करते हैं। रामानुज आचार्य जी इनके घर चले गए, वो बड़े सेठ ने तो तैयारी की थी, वहां गए नहीं, वो मिलने आया। रामानुज आचार्य ने कहा कि ऐसे जो भक्तों के दासों का दास नहीं बन सकता है, उसको सीधी भगवान की सेवा, क्या गुरुजनों की सेवा मिलना भी मुश्किल है। तो रामानुज आचार्य को उसने बहुत अनन्य किया, प्रार्थना की। तो जब वापस में रामानुज आचार्य लौट रहे थे तिरुपति से, तो फिर उस सेवक के घर में रुके जो सेठ जी ने बहुत निम्रतापूर्वक कहा तब। तो यहाँ उदाहरण ये दिया जा रहा है कि सेवा में हमको लगाएगा कौन, भगवान की प्रेम में। रोज हम मंगल आरती में गाते हैं, चतुर्विधा भगवत प्रसादो, चार प्रकार का भगवान को, श्री श्री श्रृंगार मंदर मंदर मार्जनादो, ये क्या, ये पूरा आप मंगल आरती के श्लोक को पढ़ लीजिए। गुरु का काम क्या है, गुरु क्या करते हैं? हाँ, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारादि मंदिर मार्जनादो। तो भगवान का श्रृंगार करने का, भगवान के मंदिर को मार्जन करने का, भगवान के लिए प्रसाद बनाने का, ये जो सेवाएं हैं भगवान की, ये हमको कौन। इसलिए कहते हैं जब विग्रह भी घर में हम स्थापित करते हैं, राधा कृष्ण का, गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण जगन्नाथ बलदेव जी, तो वो भी गुरुजन जब अनुमति देते हैं, उनकी सेवा के लिए कहते हैं, तब वो सेवा सफलता से कर सकते हैं। तो भगवान की प्रेममयी सेवा भगवान के पार्षदों के द्वारा, जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। यह शब्द प्रभुपाद जी ने लिखा है, कॉन्स्टेंट एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड एंड इसका था, भगवान और भगवान के पार्षदों का संग। और पार्षद कौन है? बोला पार्षद दास अनुदास भविष्ट। और ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं कि हमारे आचार्यों ने भी कहा है, आज ये किसके लिए कहा है? ये छह गोस्वामी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये छह गोस्वामी ही हमारे लिए उदाहरण है, जिन्होंने वृंदावन हमारे को प्रकट करके दिया है, जहाँ आज हम भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थालियों का दर्शन करके और भगवान के गोस्वामियों के द्वारा स्थापित मंदिर उनका, और उनके अंदर जो विग्रह स्थापित हैं, वो विग्रह तो भगवान के परपोते वज्रनाभ के द्वारा स्थापित हुए थे, भगवान के साक्षात जो है इन लीला स्थलियों का, सारे विश्व को जिन्होंने दर्शन कराया। तांडेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है एई अभिलाष। तांडेर चरण सेवी, वही बात है, वही शब्द है। कौन से? तव पाद एक मूल, जो भगवान आपके शुभ शुद्ध चरण कमलों की सेवा में लग रहा है। भक्त सने वास, ऐसे भक्तों के संग हमको रहने का अवसर दो, उनके संग में। महाप्रभु से एक बार पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, अथवा किसको आप मानेंगे कि सबसे ज्यादा उत्तम क्या चीज है? बोला भक्तों का संग। भाग्यशाली वो है जिसको भक्तों का संग मिला है, और सबसे दुनिया में अति सुख है भक्तों का संग। बोला दुख क्या है? बोला भक्तों से बिछड़ना, भक्तों से विरह, भगवान से। यहां लिखा है, श्लोक में लिखा है कि भगवान का विरह, वो विरह से कांक्षे, भगवान का विरह से भी बहुत भारी विरह भगवान के भक्तों का होता है। और भगवान के विरह और भक्तों के विरह को अलग नहीं समझना चाहिए। जब हम शुद्ध उत्तम भक्ति का, भक्ति रसामृत सिंधु से ये श्लोक पढ़ते हैं, ज्ञान वैराग आदि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल ये न कृष्णानु, कृष्ण जहाँ शब्द आता है ना, वहां भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का अर्थ केवल कृष्ण मात्र नहीं है, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण के पार्षद शुद्ध भक्त गुरुजन भी कृष्ण के अंतर्गत आते हैं, वो कृष्ण से अलग नहीं है। ईशानु कथा, ईश और उनके अनुगामी, तो भगवान और भगवान के भक्त ये एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसलिए यहां जो ये शब्द लिखा है, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, ये चौथे श्लोक में आएगा असल में, कि जन्म मुझे कहीं भी मिले लेकिन मुझे भक्तों का संग मिले। सारी भगवत भगवत सारी भागवत में ये बात कुंती महारानी की स्तुति से लेकर, ध्रुव महाराज की स्तुति से लेकर, प्रहलाद महाराज की स्तुति से लेकर, सभी जगह एक ही बात बार बार मिलेगी कि भगवान हमारे कर्मों के कारण कहीं भी जन्म मिले लेकिन एक कृपा करना, आपके भक्तों का संग मिले। अगर आपके भक्तों का संग मिलेगा तो आपकी स्मृति बनी रहेगी, आपकी स्मृति बनी रही तो संसार का संकट सब समाप्त हो जाएगा। भगवान के भक्तों के संग में कोई समस्या रहती नहीं है, कोई परेशानी रहती नहीं है, क्योंकि भगवान का जहाँ कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, भगवान श्री कृष्ण प्रकाश है सूर्य के समान, माया है संकट देने वाली वो अंधकार है। जहाँ सूर्य तहाँ नहीं अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है, वहाँ माया कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो शब्द है कृष्ण शब्द जो इस डेफिनेशन में है, इस उत्तम भक्ति का लक्षण में जो कृष्ण शब्द है, इसका अर्थ है भगवान। भगवान के सारे अवतार, सारे विष्णु तत्व, सारी शक्तियां, और वैसे तो प्रभुपाद ने लिखा है कि सब कुछ कृष्ण के अंतर्गत आता है, लेकिन उनके शुद्ध भक्त गुरुवर भी उसके साथ हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों का सानिध्य मिले, कौन से भक्तों का, जो दास दास अनुदास, जो इस परंपरा के अंतर्गत भगवान का शरण लिया हुआ है। अब प्रभुपाद जी ये अंतिम लाइन में लिखते हैं, भगवान को, भगवान की सेवा और भगवान के सेवक की सेवा और उनके सेवक की सेवा, भक्तों के संग में यही शुद्ध भक्त की एकमात्र इच्छा होती है। तो शुद्ध भक्त की का धन क्या है? शुद्ध भक्त का धन है भगवान और भगवान के भक्तों का संग। और भगवान के भक्तों के संग में क्या मिलेगा? कोई पूछे कि भगवान के भक्तों का संग का लाभ क्या है, तो भगवान के भक्तों के संग में मिलेगा भगवान का कथा और कीर्तन। भक्त संघ की परिभाषा क्या है कोई पूछे, तो भक्त संघ की माना क्या है, भक्त संघ का अर्थ क्या है? भक्त संघ का अर्थ है कि भक्त के संग में भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुण नाम लीला रूप की चर्चा करें, ये भक्त संघ का अर्थ है। तो जहां भक्त होंगे वहां भगवान के नाम का स्मरण होगा, भगवान की लीला का स्मरण होगा, भगवान की कथा होगी, भगवान की सेवा होगी। तो भक्तों के संग में, और इससे क्या होगा, जितना समय भगवान की कथा कीर्तन में भक्तों के संग में रहेंगे उतना समय माया के प्रभाव से अपने आप मुक्त हो जाएंगे, उतना समय हमारा संसार के बंधन से हमको मुक्त कर देगा। इसलिए आज का ये श्लोक फिर एक बार पढ़ते हैं, ननाक प्रश्कम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सम्मञ्जस्त्वा व्रहयै अकांक्षे। तो ये व्रहयै त्वा व्रहयै अकांक्षे, आपकी जुदाई में कुछ भी मिल जाए, चाहे संसार क्या क्या स्वर्ग का भी राज मिल जाए, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये देवताओं की प्रार्थना, जो देवता हम जो भारतवर्ष में रहते हैं उनके भाग्य की सराहना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगा, जहां भगवान आपकी अमृतमयी गुण और लीला की कथा की गंगा नहीं बहती है, न यत्र साधव, और जहां ऐसे साधु पुरुष भक्तों का संग उस कथा में नहीं मिलता है, न यत्र यज्ञ महोत्सव, और जहां हरिनाम संकीर्तन यज्ञ और भगवान का रामनामी जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा नरसिंह चतुर्दशी जैसे महान उत्सव नहीं मनाए जाते, स्वराग पीलो को न कांक्षे, वो चाहे स्वर्ग लोक हो या उससे भी ऊपर का लोक हो तो हमको नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? जो स्वर्ग में रह रहे हैं वो कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो भगवान नरसिंह देव को कह रहे हैं, लोग स्वर्ग में पता नहीं क्यों जाना चाहते हैं, स्वर्ग के देवता तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु से भयभीत होते थे, तो वहां जाके ये क्या करेंगे? ये पांचवें स्कंद के संभवतः 18वें अध्याय का श्लोक है, देवताओं की प्रार्थना, या 19वें अध्याय में है कि जहां हरि कथा नहीं, हरि भक्तों का संग नहीं, हरि नाम संकीर्तन नहीं, और तो फिर वो स्वर्ग भी हो तो किसी काम का नहीं है। यही तो यहाँ वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि ये सारे भौतिक जगत के वरदान और उपलब्धियां ब्रह्मा के लोक से लेकर रसातल लोक तक और पृथ्वी के राज से लेकर स्वर्ग के राज तक और योगियों की सब सिद्धियों से लेकर मुक्ति तक एक तरफ और एक तरफ आप अकेले, तो आप अकेले हमको चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, आपको छोड़ के ये नहीं चाहिए, आपके साथ ये मिलती हैं तो इन सब का स्वागत है क्योंकि ये सब आपकी सेवा में लग सकती हैं, सभी चीजें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं, इसलिए आपको चाहिए भी कुछ दुनिया में तो भगवान को देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भगवान देते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जो भगवान की सेवा में लगती है उसमें कभी कमी नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ ये श्लोक पूरा होता है, ये असल में पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं कि ये भक्तों का अर्थ है, भक्तों का धन है, अकंचन वित्त है, और ये धन भगवान का सानिध्य, भगवान के भक्तों का सानिध्य संग प्राप्त हो जाए तो बड़ा भाग्य समझना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरोए भव सिंधु रे। सत्संग मानव जन्म में मिलना बहुत दुर्लभ है, तो सत्संग किससे मिलेगा, जब कोई साधु होगा तब सत्संग मिलेगा ना, यही तो भक्तों की पहचान है। ये भगवद गीता का चतुर्श्लोकी का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मचित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त वो हैं जो हमेशा मेरी कथा करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं और उसमें ही रमण करते हैं। ये रमंत्र जो है ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का सूचक है कि वो बड़ा आनंद लेते हैं, वो प्रेम के स्तर की भक्ति की बात हो रही है। तो हरि कथा हरि भक्तों का संग, ये बाकी सब संसार के उपलब्धियों से उत्तम है, महान है, बाकी सब इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसको भक्तों का संग है, अब ये इसको आप एक और दूसरी दृष्टि से समझ लीजिए, एक कहानी से ये कथा को समझा के कथा पूरी करते हैं। एक गांव का बहुत गरीब आदमी था, शहर में आया तो एक सेठ जी ने क्या कहा कि मुझे नौकरी में रख दो। सेठ जी ने कहा क्या लोगे, बोला कुछ नहीं लूंगा, सेवा करूंगा, बस भोजन देना, रहूंगा इधर, कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन तुमसे बड़ा आदमी कोई मेरे को मिला तो फिर तेरी सोवा छोड़ के उसके साथ चला जाऊंगा। उसने बोला मैं तो नगर का बड़ा सेठ हूं और कौन, तुम बड़ा कौन मिलेगा तुमको, आओ सेवा करो, मुफ्त का काम करने वाला मिल जाए तो कौन नहीं रखेगा। ये बड़ा प्रेम से सेवा करता था, कुछ नहीं मांगता था। एक दिन उस नगर का कमिश्नर आ गया तो सेठ जी उठ के खड़े हो गए, उसको उसका आवभगत करने लगे और उसको सेवा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इसने हाथ जोड़ के उसको कहा सेठ जी मैंने कहा था आपसे बड़ा आया तो आपको छोड़ के चला जाऊंगा, अब मुझे मुक्त करो। और कमिश्नर को कहा देखो मुझे आप अपनी सेवा में रख दो। बोला क्यों, क्या चाहिए, क्या बोला कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करूंगा, कुछ नहीं लूंगा, आपसे बड़ा कोई आया तो फिर मैं आपको छोड़ के उनके सामने चला जाऊंगा। कमिश्नर का मुझसे बड़ा कौन है, ये तो पूरा इस तो डिस्ट्रिक्ट का मैं ही कमिश्नर हूँ, डिवीजन का कमिश्नर। तो यहाँ वहां सेवा कर रहा था, बड़े प्रेम से सेवा कर रहा था। एक दिन मंत्री जी आ गए तो कमिश्नर जी आगे पीछे भागने लगे। अब इसने कहा कमिश्नर जी मैं आपकी सेवा छोड़ के मंत्री की सेवा में जाऊंगा। तो मंत्री को कहा कि मंत्री जी मैं आपकी सेवा करूंगा। बोला क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, सेवा में करूंगा प्रेम से, लेकिन आपसे बड़ा हो गया। बोला बड़ा क्या, मैं ही तो मंत्री हूँ बड़ा यहाँ का। मंत्री अब क्या, मंत्री क्या, मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के पास चले गए, बड़ी प्रेम से सेवा कर रहे। प्रधानमंत्री आ गए तो मुख्यमंत्री बेचारे खड़े हो गए। बोला ये कौन है, बोला ये तो यहाँ का देश का पूरे का प्रधानमंत्री है। बोला फिर तो इसकी सेवा में चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री को कहा आपकी सेवा करूंगा लेकिन आपसे बड़ा। बोला मेरे से बड़ा कौन है, मैं ही तो प्रधानमंत्री। बोला मैं तो फिर आपकी सेवा करूंगा। वो देखा एक दिन तो एक महात्मा कोई साधु आ गया तो प्रधानमंत्री उसको हाथ जोड़ के चरणों में छू रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है। बोला महाराज ये क्यों। बोला ये तो साधु महात्मा है, हम तो संसार में राजा महाराजा हैं, लेकिन ये तो हमारे गुरुवर हैं। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा घर के अंदर महात्माओं को रखा करते थे, महात्मा ऐसा गुरुवर आया तो राजा को वो बहु प्रधानमंत्री को प्रणाम करते देखा तो कहा महाराज फिर मैं आपको छोड़ के महाराज के साथ चला जाऊंगा। महाराज के साथ गया तो घर में मंदिर था और महाराज माथा टेक रहा है भगवान को। बोला महाराज मैंने समझा आप बड़े हो आपको प्रधानमंत्री। बोला प्रधानमंत्री इस दुनिया का है, ये तो जगन का नाथ है, ये भगवान जगत का नाथ है, तो इसी को प्रणाम करना चाहिए। बोला फिर मैं इसी की सेवा, बोला आओ आपको इसकी सेवा में लगाऊंगा, हम भी लगे हैं आप भी लगे रहो। तो जो भगवान का भक्त है वो राजा महाराजाओं से बहुत महान है, ये कह रहा है वृत्तासुर, क्योंकि वो सब राजा महाराजा उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक बैठे रहते हैं। और ऐसे आज आप इतिहास को खोल के देख लीजिए, कोई संसार में सुखी है, दीन कहे धनवान सुख सार हो रहे, गरीब समझता है धनवान को सुख है, धनवान कहे राजा सुख सार हो रहे, धनवान कहता है हमको कहाँ सुख है, राजा को सुख है, राजा कहे महाराजा सुखी, अरे महाराजा बड़ा सुखी है। अब जैसे हम सब सब छोटे छोटे राज हैं और महाराजा अमेरिका सुखी, लेकिन करुणा ने इस वक्त उसको दुखी कर दिया, तो महाराजा भी दुखी हो गया। राजा कहे महाराजा दुखी और महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुख सारो रे, महाराजा कहते हैं हमारी तो ये करुणा ने हालत कर दी है, इंद्र देखो बेफिक्र बैठा है वहां, कोई चिंता नहीं है। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो, बोला इंद्र कहे मैं कहाँ सुखी हूँ, कभी मेरे को सुअर की जून में जाना पड़ता है और कोई अश्वमेध करता है तो मेरी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है और मेरा सिंहासन हिलता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुख सार हो रहे, अरे ब्रह्मा जी को सुख सारा है, हम तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र कहता है मैं बदलता हूँ, 14 इंद्र एक ब्रह्मा जी के दिन में बदलते हैं, तो ब्रह्मा जी कितना 100 साल तक रहता है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कहे शंकर सुख सार हो रहे, ब्रह्मा जी कहते मुझे कहाँ सुख है, मुझे सृष्टि करनी पड़ती है। शंकर जी देखो मौज में बैठे हैं समाधि में, शंकर जी का आप शंकर कहते हैं विष्णु सुख सार हो रहे, ये भगवान विष्णु को सारा सुख है। अरे भगवान नारायण, बोला हरि भगत बिना सब संसार दुखियारो, सब संसार दुखियारो, सब संसार दुखियारो। भगवान के भक्त और भगवान के सानिध्य और भगवान के विरह से बड़ा कोई दुख नहीं है, और भगवान की स्मृति से भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान का सानिध्य, भगवान के भक्तों का संग मिले, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई अर्थ नहीं है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। ये आज वृत्तासुर महाराज के दूसरे श्लोक का भाव है। तीसरे श्लोक को आज पढ़ लेते हैं, कल कथा इसके ऊपर करेंगे। ये है भक्त की कामना, भक्त का इच्छा क्या है, कैसी भक्त की इच्छा है, ये श्लोक पढ़ लें, कल इसको पढ़ें। अजात पक्षा इव मात्रम खगा,
अजात पक्षा इव मात्रम खगा,
स्तन्यम यथा वत्सरा सुधारता, प्रियं प्रियेव युयुस्तं विष्णा,
प्रियं प्रियेव युयुस्तं विष्णा,
मनो अरविन्दाक्ष ददृष्टे त्वा,
मनो अरविन्दाक्ष ददृष्टे त्वा।
तो तीन इच्छाएं इसमें, तीन उदाहरण से इच्छा को प्रकट किया गया है। पहली इच्छा है अजात पक्ष, वो पक्षी जिसके पर अभी नहीं निकले हैं, वो घोंसले में अपनी माँ के लिए जैसे तड़पता रहता है कि आके मुझे खिलाएगी। दूसरा उदाहरण है नया गाय का बछड़ा, खूंटे में घर में बंधा हुआ है, गाय जंगल में चरने गई है, वो उसका दूध के लिए तड़पता रहता है, माँ कब आएगी मुझे पिलाएगी। और तीसरा उदाहरण है कि पतिव्रता स्त्री अपना पति परदेश गया है, उसके आने और उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। ऐसे भगवान हे अरविंदाक्ष, हम आपके दर्शन के लिए, आपको पाने के लिए प्यास हमारी बनी रहे। तो इस श्लोक के ऊपर कल चर्चा करेंगे, आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। तो आज कौन सा धन सबसे बड़ा है, धन है भक्तों, भगवान का सुमरण और भक्तों का संग। भगवान से बिछड़ के दुनिया में कुछ भी मिल जाए किसी काम का नहीं है, ये वृत्तासुर के आज के श्लोक का सार है। अब कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
कोई कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? हाँ जी हाँ जी हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ भाई शुद्ध सत्व आ गया।
अच्छा,
कोई प्रश्न है तो बोलिए।
हरे कृष्णा, आई वुड रिक्वेस्ट सब एक बार म्यूट पे चले जाए, एक एक करके जिसको क्वेश्चन पूछने हैं वो चैट विंडो पे लिखता जाए कि मैं नेक्स्ट, फिर रसराज प्रभु कॉल करेंगे और वो पूछते जाएंगे। तो सब अभी म्यूट पे चले जाए। अद्वैत प्रभु आप क्या, आप यू कैन प्रोसीड, फिर एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज अगर सब अनम्यूट रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी।
हरे कृष्ण बोलो। हाँ रसराज जी बोलो। हाँ जी
अभी मेरा क्वेश्चन था।
हाँ जी,
हम लोग वृद्धासुर की तरह है लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे?
हमारी चेतना वृत्तासुर जैसी नहीं है, हमारी परिस्थिति वृत्तासुर जैसी है। वृत्तासुर जैसी परिस्थिति कैसे है, कोई कहे तो के भौतिक जगत में है तो वृत्तासुर देख रहा है कि हमको तो हारना ही पड़ेगा इस दुनिया से, हमको भी एक दिन हार के जाना ही पड़ेगा। ये वृत्तासुर की हमारी स्थिति है, इसकी परिभाषा ये हुई कि जैसे वृत्तासुर बड़े बहुत शक्तिशाली होते हुए इंद्र के सामने खड़ा था, लेकिन वो भगवान के पास जाने के लिए बहुत इच्छुक था और ऐसे ये उनकी भावना थी। तो ऐसी हमारी चेतना कैसे हो, ये आपका प्रश्न है। इसका सीधा उत्तर ये है कि जिनकी ऐसी भावना है उनके संग करने से हमारे अंदर ऐसी तीव्रता, ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी। तो हमको ऐसे संग के लिए कांक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसमें श्लोकों में मुख्य बात है संग की। और वृत्तासुर को भी असल में नारद आदि का संग मिला था, तब ये इच्छा उत्पन्न हुई। तो संग जो अच्छा मिलेगा तो ये सब चीजें हमारे जीवन में, और फिर एक संग मिले और दूसरा विवेक से जीवन के ऊपर नजर डालनी चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं वो ठीक है या ये शास्त्र कह रहा है ये ठीक है, विवेक से देखना चाहिए। लोग क्या है कि दुनिया क्या चाहती है ऐसे देखते हैं। दुनिया क्या चाहती है, 1000 अंधे हों और 1000 अंधे कहेंगे कि कोई सूरज आज निकला ही नहीं है, एक छोटा बच्चा कहेगा नहीं दिन है सूरज निकला है, तो बच्चा सच्चा है कि अंधे सच्चे हैं? तो संसार वाले तो हैं सारे अंधों जैसे, वो तो कहते हैं दुनिया ही अच्छी है, दुनिया सब छोड़ के चले गए फिर भी कहते हैं दुनिया ही अच्छी है। लेकिन एक छोटा प्रहलाद जैसा बच्चा, ध्रुव जैसा बच्चा कहता है नहीं भगवान का सानिध्य अच्छा है, जिन दोनों को मिल गया तो उनका नाम आज भी अमर हो गया, ग्रंथों में गाया जा रहा है, और उनके बराबर उनके समकालीन कई राजा महाराजा थे चले गए, उनका नाम किसी को याद भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा भारी जो है। हरे कृष्णा, ये चेतना हमारी अच्छे संग से भगवान में मन लगे, ऐसा संग हमारे को मिलेगा जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो हमारे को, मैं आपको कहूं ये कथाएं तो भागवत में बहुत हैं लेकिन इन कथाओं को कोई हाथ भी नहीं लगाता है। वो सब कथाएं वो करते हैं जिसमें दुनिया वाली बात होती है, इसलिए कथा सुनने और करने वालों का महिमा भी शास्त्र में लिखी हुई है। कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता होगा तो भक्ति का रस वहां प्रकट होगा। इसका मतलब कथा करने वाला भी कृष्ण प्रेमी है, सुनने वाला भी कृष्ण प्रेमी है, तो रस बाहर निकलेगा। और अगर कथा करने वाला धनार्थी है और सुनने वाला कृष्णार्थी है, सुनने वाला चाहिए जैसे आप कह रहे हमारे को ऐसी चेतना हो भगवान की भक्ति करें, और कथा करने वाला धनार्थी हो वो कहे भाई इस कथा के बाद आपको ये पुण्य चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, ये भोग लगाना चाहिए और ये दान देना चाहिए, तो कथा में रस प्रकट नहीं होगा। और कथा करने वाला कृष्णार्थी होना चाहिए और सुनने वाला धनार्थी होना चाहिए, ये स्कंद पुराण में भागवत के श्रोता वक्ता का निरूपण है। अगर कथा करने वाला कहे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण ही धन है, लेकिन सुनने वाला कहे नहीं भाई हम तो आए हैं संसार को मांगने, ये महाराज बार बार कहते हैं संसार को छोड़ दो, तो वहां भी भक्ति का रस प्रकट नहीं होगा। तो श्रोता और वक्ता का जहां दोनों का एक जैसा भाव होता है तब ये भक्ति का रस और वहां प्रकट होता है, तब चेतना में भगवत की प्राप्ति, भगवत कथा की इच्छा, सुनने की इच्छा, भगवान के नाम का जप करने का जो है वो संकल्प, ये सब तब हो सकता है जब अच्छे भाव से भक्तों का संग करें, ऐसे भक्तों का जो ऐसी भाव के हैं। हरे कृष्ण।
प्रभु जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी, हाँ जी।
तो जी मेरे दो छोटे प्रश्न है।
हाँ जी।
जैसे जैसे जो अर्जुन है वो इंद्र का पुत्र और वो भगवान को मांगता है, भगवान से नहीं मांगता, वृत्रासुर भी भगवान को मांगता है, भगवान से नहीं मांगता, एंड देयर आर सो मेनी, वो जैसे वो बृहस्पति बृहस्पति का अपने गुरु का अनादर करते हैं, विश्व रूप को मार देते हैं, व्हाई स्टिल इंद्र इज मतलब सो डियर टू लॉर्ड।
पहली बात तो ये कि अर्जुन जो है वो भगवान का नित्य सखा है, उस नित्य सखा अर्जुन के अंदर इंद्र देवता का अंश भगवान की सेवा के लिए आया है। अर्जुन जो है वो डबल पर्सन है, एक तो शुद्ध भगवान का नित्य पार्षद है सखा के रूप में, और दूसरा इंद्र ने उसमें प्रवेश किया है एक देवता ने भगवान की सेवा के लिए, तो इसलिए इंद्र से अर्जुन का स्थान ऊपर है देखा जाए तो, क्योंकि नर नारायण कृष्ण और अर्जुन है तो ये तो भगवान के अवतार की श्रेणी में आ जाते हैं जैसे हम कहते हैं। बाकी इंद्र के अंदर ये सब इच्छाएं हैं, वो भक्त होते हुए भी उसको अपने पद प्रतिष्ठा की रक्षा करने का एक इच्छा उनके अंदर है। इंद्र तो वो है जो भगवान को प्रार्थना करने गया था अवतार के लिए, और भगवान ने जब इंद्र का यज्ञ बंद करा दिया तो वर्षा करके वृंदावन को डुबाने लगा, और भगवान उनकी माँ के कुंडल वापस देने गया आदिति के, और पारिजात का वृक्ष ले लिया, तो इंद्र भगवान से लड़ने लग गया। तो पद और प्रतिष्ठा का अहंकार आता है और ये शुद्ध भक्तों में नहीं होता है, इंद्र के ऊपर पद और प्रतिष्ठा के कारण ये दोष दिखाई देते हैं। तो ये इंद्र तो बदलता रहता है, वो इंद्र एक पद का नाम है, उसके ऊपर व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन अर्जुन ऐसे बदलने वाले वाला नहीं है, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। तो इंद्र और फिर ये देवता जो हैं, ये सतोगुण की वृत्ति में ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं है, तो सतोगुण की वृत्ति में ज्ञान से उनको बंधन होता है, और सुख के कारण उनका बंधन तो रहता ही है, और अपने सुख में ही वो सुखी रहना चाहते हैं, तो इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन अलग है, इंद्र अलग है, लेकिन इंद्र के अंश अर्जुन में प्रवेश किया था, वो अंदर का अंश जब पांडव स्वर्ग आरोहण किया तो वो अंश चला गया वापस स्वर्ग में, लेकिन अर्जुन तो वापस भगवान के धाम में चला गया जहां भगवान का नित्य पार्षद है। देखो इंद्र जो है भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव डेमी गार्ड है, जो इस संसार का संचालन चलाने का अधिपति है वो इंद्र है। तो इंद्र को माना ऐसे है कि जैसे चीफ मिनिस्टर एक है, लेकिन एक बेटा अपना हो एक चीफ मिनिस्टर हो तो चीफ मिनिस्टर का अपनी जगह पे सम्मान किया जाता है, लेकिन भक्त तो बेटे की तरह है जो घर के अंदर रहता है और वो तो कुछ नहीं चाहता है। तो इंद्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो संचालन चलाने के लिए विशेष रूप से देवता है, तो उसको अपना संचालन चलाना है, इसलिए उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो इसलिए दो ही शब्द हमने कहे हैं, दोबारा उसको कह रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा। जहां भी इसका कल या परसों बात कथा आएगी तो बात करेंगे, इंद्र वृत्रासुर को वध करने के बाद इसको फिर दोष लगेगा एक संत को मारने का, तब ये इंद्र जो है इंद्र के पद को छोड़ के चला जाएगा और जाके कमल के अंदर मानसरोवर में रहेगा, फिर शंकर जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, विष्णु जी की कृपा होगी, तब इंद्र वापस पद पे आएगा। जब इंद्र यहाँ नहीं है तो चंद्रवंश का महाराज नूस इंद्र के पद के ऊपर आया, उसको इंद्र बना दिया गया। अच्छा, वो इंद्र बन गया तो उसको
जो कुछ भी भगवान को उतरना है पहले रानी को करें
जी।
तो जैसे नॉर्मली वी पीपल डू उसी पत्र वो ऑफर करते हैं भगवान कृष्ण को, तो वो राधा रानी के थ्रू तो नहीं करते हम। जैसे पहले पत्र जो है तुलसी पत्र कृष्ण जी करते हैं, फिर बलराम जी को, फिर वो महाप्रभु को और अद्वैताचार्य और नरसिंह प्रभु जी को। तो शैल भी रिवर्स है, पहले मतलब उनके पार्षदों को ऑफर करें फिर भगवान कृष्ण को करें?
नहीं नहीं, करना सिर्फ भगवान को है, पार्षद को तो नहीं कर। जैसे अलग केवल गुरु जी को भोग लगाते हैं तो उसमें कोई पत्ता रखना है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके उनको कहते हैं कि आपके माध्यम से भगवान तक पहुंचाना है उनके। मैंने हम देंगे गुरु जी को तो गुरु जी अपने लिए नहीं लेगा, वो अपने गुरु के द्वारा राधा रानी के माध्यम से या बलराम जी के माध्यम से कृष्ण तक जाएगा और वहां से वापस आएगा तो सही सब लोग प्रसाद लेंगे, ये भोग नहीं लेंगे। तो वो जो तुलसी पत्ता जो हम अर्पण करते हैं वो भगवान के लिए है, लेकिन इनके माध्यम से करते हैं कि हमारे को तो भगवान नहीं जानते हैं, आप ये भगवान तक पहुंचा दीजिए।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।